महाभारत के युद्ध के बाद कुछ वर्ष करीब 12 वर्ष धृतराष्ट्र रहे राज्य में और उसको यज्ञ करने की इच्छा हुई। यज्ञ में दान पुण्य करके फिर वन में जाना है, तपस्या करके अपना जीवन सार्थक करना है। संयमी युधिष्ठर को कहलवा के भेजा कि मुझे दान पुण्य करना है, अगर आप थोड़ा धन दे सकें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। महाराजा युधिष्ठर ने जवाब में बहुत सुंदर व्याख्या की कि मेरा शरीर और मेरे भाई और मेरा परिवार, ये सब के सब हम आपके हैं और ये राज्य भी आपका है। थोड़ा सा धन नहीं, आप यथेष्ट धन गौवें हाथी घोड़े जिन वस्तुओं को दान में देना चाहते सब की सब वस्तुएं राज्य की आप उपयोग में लाइएगा। जिसने लाक्षाग्रह बनाने में हाथ दिया था, पता होते पताया बताया नहीं था, ऐसे धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठर को तनिक भी वैर भाव नहीं है, इंद्रियों में संयम है। ये राज्य मिला है मेरे भोग के लिए नहीं, अगर यज्ञ करते हो तो प्रजा के उपयोग में आएगा तो मैं क्यों इनकार करता। युधिष्ठर महाराज ने यज्ञ की व्यवस्था की और धृतराष्ट्र जिसको एक तोला सोना देना चाहते थे उसको 10 दिया, जिसको 10 तोला देना चाहते थे उनको 100 दिया, जिनको 100 गाय देना चाहते थे विद्वानों को उसको 1000-1000 दिया। धृतराष्ट्र खूब प्रसन्न हुए, युधिष्ठर को खूब खूब आशीर्वाद देकर फिर वनवास का रास्ता लिया। वन में तपस्या करते करते उनका चित्त बड़ा उद्विग्न रहता था, अपने बेटों की याद, गांधारी को भी अपने मृतक पुत्रों के प्रति आकर्षण याद रहती थी और धृतराष्ट्र को भी, कुंता जी भी साथ में गई थी। भगवान वेदव्यास जी संयम की मूर्ति वहां पधारे। वेदव्यास जी ने कहा कि तुम जिस जिनकी याद करते हो और जिनको फिर से मिलना या देखना चाहते हो, तुम्हें उन पुत्रों का दर्शन कराने का मैंने पहले से ही ठान लिया है। जो कौरव युद्ध में मारे गए हैं, जो भी योद्धे युद्ध में मारे गए हैं, वे स्वर्ग में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात स्वर्ग में है। मैं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से उनको आपके समक्ष कर सकता हूँ, उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत करके अपना दुख मिटा सकते हैं। हे धृतराष्ट्र, तुम ये ऐसा न सोचो कि मैं अंधा अपने बेटे को देख नहीं पाया, ये तो भगवान की लीला है। कुंताजी धृतराष्ट्र और गांधारी को संबोधित करते हुए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि धृतराष्ट्र, ये जो कुछ महाभारत के खेल में हुआ है वो पहले से नियत था। कुछ स्वर्ग के तो कुछ पितृलोक के तो कुछ ब्रह्मलोक के जीव तो कुछ प्रेतलोक के जीव तो कुछ असुर लोक के जीव तो कुछ गंधर्व इस धरती पर आए थे और अपना अपना अलग अलग पाठ अदा करके युद्ध का निमित्त पैदा करके अपने अपने लोक में चले गए। मैं उन सब को अपने अपने उन लोकों से बुलाकर प्रतिस्मृति विद्या के बल से तुम्हारे सामने खड़ा करता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो कि विधवाएं बहुएं भी उनको मिले, वीरों से बातचीत करें, तो इस बात पर भी मैं राजी हूं और तुम उनको भी बुला लो। तारीख नक्की हुई और वो राज्य में वीरों की जो पत्नियां थी, पति के विरह में या शोक में डूबी हुई थी, उनको भी बुलाया गया। इंद्रग्राम को जीते हुए और कारक पुरुष योग विद्या में आखिरी शिखर को छुए हुए वेदव्यास जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम गंधर्व राजों में श्रेष्ठ गंधर्व थे और जो पांडु थे वो मरुत गणों में श्रेष्ठ मरुत थे। दुर्योधन तो साक्षात कली का रूप था और शाकुनी द्वापर युग का स्वरूप था और अर्जुन नरों में श्रेष्ठ था और भगवान कृष्ण तो स्वयं नारायण थे। भीष्म पितामह वसुओं गंगा का पुत्र था और अष्ट वसुओं में का एक श्रेष्ठ वसु था। इस प्रकार महाबली बलवान भीम ये भी पवन पुत्र पवन का अंश था और विदुर जी भी धर्म के अंश थे और युधिष्ठिर भी धर्म के अंश हैं। ये सब देव गंधर्व और भूत और राक्षस ये सब कौरव कुल में और पांडव कुल में अलग अलग अवतरित हुए। भगवान सूर्य की उपासना करने वाला कर्ण दोनों कुल में कलह का निमित्त बनने वाला कर्ण सूर्य के अंश से पैदा हुआ, मानो दाता सूर्य ही था। तो ये सब अपना अपना ड्यूटी अपना अपना खेल अपना अपना कर्तव्य बजा कर गए हैं। जब तक इस जीव को आत्म परमात्मा सुख की तीव्र प्यास नहीं होती तब तक ऐसा करके देखें, ये मजा लेके देखें, ऐसा भोग के देखें, ऐसा करके देखें, इस संकल्प से देवलोक वाले मृत्यु लोक में आते, मृत्यु लोक वाले देवलोक में जाते और कभी कभी गंधर्व लोक वाले मृत्यु लोक में आते तो कभी यक्ष लोक के मृत्यु लोक में आते तो कभी मृत्यु लोक के आदमी यक्ष लोक में जाते हैं, गंधर्व लोक में जाते हैं, किन्नर लोक में जाते हैं और पितृ लोक में जाते हैं। जीव को परमेश्वर के सिवाय के सुख की अथवा कुछ बनने की भावना ही जीव को लोक लोकांतर की गति कराती रहती, लोक लोकांतर में भिजवाती रहती है। श्री कृष्ण तो साथ में थे लेकिन शाकुनी की या और लोगों की आत्म पद को पाने की इच्छा न होने से वे आत्मलोक को आत्म परमात्मा को उपलब्ध न होकर अपने अपने लोकों में गए हैं। अब मैं तुमको संध्या हो रही है, जैसे कोई सरिता से स्नान करके बाहर आए ऐसे ही ढंग से ये सब योद्धा युद्ध के मूड में जैसे अरण्य में गए रण में गए थे ऐसे ही उसी मूड से अभी अभी मेरी प्रतिस्मृति विद्या के बल से आएंगे। आप सावधान होकर देखिएगा और उनसे मिलिएगा, वार्तालाप करिएगा, अपना दुख मिटाइएगा। भगवान वेदव्यास ने प्रतिस्मृति विद्या के बल से संकल्प किया, बस गंगा में खड़बड़ाहट हुआ और जैसे योद्धे युद्ध में गए थे कुरुक्षेत्र में ऐसे ही उस गंगा से बाहर निकल आए। केवल फर्क इतना था कि उनके कानों में कुंडल था और हृदय में द्वेष राग नहीं था, हृदय में स्नेह और मिलनसार स्वभाव था। स्वर्गीय सुख के प्रभाव से उनकी चित्त वृत्तियां सात्विक हुई थी। कर्ण भी मिला, दुर्योधन भी मिला और वेदव्यासी महाराज ने धृतराष्ट्र को अपनी कृपा दृष्टि दी जिससे वो दिव्य दृष्टि से वो अपने पुत्रों को देख सका। ऐसा तुम्हारा भारत था और ऐसा रिसर्च दुनिया के अभी किसी विज्ञान के पास नहीं है और फिर भी भारतवासी इंद्रिय सुख की लोलुपता में उलझे हुए देशों की नकल करने में अपने को चतुर मानते हैं और अपनी अध्यात्म विद्या भूलने का तो जाने उन्होंने ठेका ले लिया है। अपने को अंदर से हीन मानते हैं, अपनी भाषा को अपने पहरवेश को हीन मानते और दूसरे की भाषा और पहरवेश को जल्दी धड़ाक से ले लेते। हृदय में ऐसी लघु ग्रंथि छुपी है कि वहां से जो कुछ भी आता है बढ़िया है। साबुन देखो कितना अच्छा है, अरे गौओं की चर्बी पड़ती है, उस साबुन से हाथ मलकर भोजन खाया तो बैक्टीरिया तो नहीं रहेंगे लेकिन अपवित्रता तो मौजूद रहेगी। हम लोग पाश्चात्य जगत से इतना अंधे अनुकरण से इम्प्रेस हो गए कि पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर भी पाश्चात्य गीत गाने में लग जाते हैं। उन बिचारों को पता नहीं कि तुम्हारे भारत में कितना सारा खजाना था और अभी भी छुपा हुआ है। ऐसे महापुरुषों के चरण में जाकर कुछ भारत की उस आध्यात्मिकता के प्रसाद को पाकर जीवन धन्य कर लो। डांस और फैम मुर्गी और अंडा और विकार बढ़ाने वाला, उत्तेजना बढ़ाने वाला खोराक तो इंद्रियों को भोग विकार में गिरा देता और अंत में आदमी को नर मानव बनाता। आदमी को नर पशु बना देता है, जो इंद्रिय संयम करता है, सात्विक आहार, सात्विक पहरवेश आदि और सात्विक पुरुषों का संग करता है और सत्य स्वरूप ईश्वर को प्रीति करता है, वह ऐसा आदमी भले बाहर से गरीब दास दिखे, फिर भी हृदय में तो अमीरों का भी अमीर हो जाता है। इसलिए अपने इंद्रियों को भड़कीले सुखों में जिन्होंने उलझाया है उनकी नकल करना हमारे हित में नहीं है, लेकिन अपने जीवन को जिसने संयत करके परमात्मा प्रसाद पाया है इसी का अनुकरण करना हमारे हित में है। वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने, कुंताजी ने और बहुरानियों ने अपने अपने मृतक पतियों से वार्तालाप किया, बातचीत की। पिता ने पुत्र से बात की और पुत्र ने पिता के चरण छुए। बेटों ने माँ को प्रणाम किया और माँ ने बेटों को देखा और वार्तालाप किया। सबके मन में मिलन भाव था, स्नेह था। मिलन भाव फिल्म वाला विकारी मिलन नहीं, पत्नियों के हृदय में पतियों से मिलन भाव था, हार्दिक मिलन, हार्दिक एक दूसरे की मंगल की भावना और हार्दिक मिलन में काम को कोई स्थान नहीं था। वहां तो वेदव्यास जी महाराज की कृपा प्रसादी के वातावरण में इंद्रिय ग्राम में जीने वाले लोग भी इंद्रिय विकारी सुख से बचे हुए थे और निर्विकारी नारायण में स्थित पुरुष ने उन प्रतिस्मृति विद्या के बल से सारे कुटुंब को दुख मुक्त कर दिया। रात भर वार्ताल विलाप हुआ, बातचीत हुई। अरण्य में कुछ घूमने वाले घूमे, टहलने वाले टहले और सुबह होते होते भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि अब सवेरा हो रहा है, अपने पुत्रों से मिलने वाले माँ बापों को और माँ बाप से मिलने वाले पुत्रों को, पत्नियों से मिलने वाले पतियों को, पतियों से मिलने वाली पत्नियों को संबोधित करते हुए वेदव्यास जी ने कहा, कब ये वीर अपने अपने लोक में जाएंगे? गंधर्व लोक से आए हुए गंधर्व लोक, यक्ष लोक से आए हुए यक्ष लोक, मरुद गणों से आए हुए मरुद लोक, मरुद गणों में जाएंगे और शाकुनी जैसे और जो कलयुग के जैसे दुर्योधन या दूसरे जो राक्षस हैं वे राक्षसी लोक में जाएंगे। अपने अपने लोक में जाने वाले अपने अपने लोक में जाएंगे, लेकिन जिन पत्नियों को अपने पतियों के साथ जाने की इच्छा हो वे भी इस गंगा में प्रविष्ट हो जाएं तो अपने पति के लोक को प्राप्त हो सकती है। जिन कुल वधुओं का विश्वास भगवान वेद व्यास में था और पतियों के प्रति स्नेह अधिक था उन सब ने सशरीर गंगा में प्रवेश किया और वेदव्यासी के योग बल से वे लोग पतिलोक को प्राप्त हुई। सब कथा कहने का तात्पर्य है कि जीव के अंदर अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा छुपा है, इसकी सीमा शक्ति सीमा का कोई अंत नहीं। ऐसा अनंत परमेश्वर साथ में होते हुए भी जीव आज दर दर की ठोकर खा रहा है केवल इंद्रिय सुख की गुलामी। भगवान बोलते हैं, संनियमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को समनियत करे, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके विकारों से थोड़ा अपने को बचाए। ऐसा पुरुष सर्वत्र संभाव से बरते, भूत मात्र के हित में रहे तो वो मुझे जल्दी पा लेता है। अब मर्जी आपकी। उस चाचा की मुसीबत से भागे हुए गरीब दास ने भगवान के दीदार कर लिए और भगवान साकार रूप में दिखे, क्योंकि भाव प्रधान था। व्यक्ति भाव प्रधान और इंद्रिय संयम रखे तो साकार भगवान को मानने में उसको सुविधा रहेगी। अगर विचार प्रधान है और संयत इंद्रिय है तो निराकार भगवान को मानने में सुविधा रहेगी। निराकार को मानो चाहे साकार को मानो, लेकिन संयम ये अनिवार्य शर्त है। और इंद्रियों का संयम रखने के कई उपाय महापुरुषों ने बताए, जैसे अपने सुख की लालच मिटाने के लिए अपने सुख के साधनों को बहुजन हितायक खर्चने से अपने इंद्रिय विकारी सुख की लालच मिटती है। जिनके पास धन संपत्ति और सामग्री है वे बहुजन हिताय उसका उपयोग करें तो उनका विकार क्षीण होता है, और जिनके पास नहीं है वे केवल इच्छा ही त्यागें इंद्रिय सुख की तो उनका जल्दी काम बन जाता है। अपने सुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है चार दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। जो दूसरों के काम आना सीख लेता है उसकी कामना जल्दी क्षीण हो जाती है। कर्मयोगी के लिए अनिवार्य शर्त है कि कर्म तो करे लेकिन कर्म का बदला इंद्रिय भोग न चाहे, कर्म का बदला कुछ न चाहे, भगवान को अर्पण कर दे। ये भगवान की सृष्टि और सब भगवान के जन है, उनकी यथा संभव मैं सेवा करूं। जैसे पापियों की सेवा करना शास्त्रों में मना है, ऐसे धर्मात्माओं की सेवा मिले तो उसको त्यागना भी मना है। पापी की सेवा करने से पाप बढ़ेगा, पुण्यात्माओं की सेवा करने से पुण्य बढ़ेगा। पापी और पुण्यात्मा में परमात्मा देखने से तुम्हारा अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा। आचार्य विनोबा भावे, उनकी मां का नाम था रखुनाई और पिताजी का नाम था नरहरे भावे। नरहरे भावे और रखुनाई, इनका स्वभाव भी साधु स्वभाव था। गृहस्थ में रहते थे फिर भी कुछ तो संयम रहा होगा, अपनी आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगे ऐसा सोचकर पति पत्नी ने एक व्रत ले लिया कि अपने बेटे को तो पालते पोसते लेकिन कोई भी एक आध विद्यार्थी अपने घर में रखें, और विद्यार्थी गरीब कोई विद्यार्थी पढ़ लिख कर समाज के काम आए तो अपना बिगड़ता क्या है। एक विद्यार्थी को अपने घर में रखने का नियम लिया, आय के अनुसार एक ही विद्यार्थी का पालन पोषण कर सकते थे। विनोबा भावे ने एक बार माँ से पूछा कि माँ तुम बोलती हो सब में समबुद्धि होनी चाहिए, समता का व्यवहार रखना चाहिए, उस पर भगवान प्रसन्न होते और भगवान जल्दी मिलते, लेकिन माँ तू खुद विषमता करती है। विद्यार्थी जो घर में रहते हैं उनको तो तू गरम रोटी बना के खिलाती और बासी बचती तो मुझे ही देती, और ज्यादा होती तो तू खाती है मेरे को देती, विद्यार्थी को कभी बासी रोटी नहीं देती। माँ तू बोलती है कि सम व्यवहार करना चाहिए, सम बुद्धि रखनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ पुण्यशीला माँ तू स्वयं विषम व्यवहार करती, विद्यार्थी को तो ताजी रोटी बना के देती और मेरे भाग्य में अपने भाग्य में बासी रोटी क्यों रखती है। रखुनाई बोलती है नरहरि भावे की धर्म पत्नी और आचार्य विनोबा की मां, ऐसी व्यक्तियां ही तो संत की मां हो सकती है, न सरल हृदय की समबुद्धि वाली। वो सत्य वक्ता मां बोलती है कि पुत्र मेरी अभी समबुद्धि नहीं हुई, मुझे विद्यार्थी में तो परमात्मा की भावना हो जाती है लेकिन तेरे में परमात्मा की भावना नहीं जमती बेटा। मैं जिस दिन तेरे में भगवान देखने लगूंगी ना तो उसी दिन तेरे को भी ताजी रोटी खिलाऊंगी और बासी तेरे को नहीं दूंगी, विद्यार्थी की नहीं तेरा भी आदर करूंगी। ऐसी पवित्र माताओं के कुख से तो संत आत्मा प्रकट होंगे। अंडा खाकर फिल्म देखकर जो बच्चों को जन्म देती है उनके बच्चे तो मंकी ब्रांड अंडा छाप बच्चे होंगे ही, मुर्गी छाप इसमें कोई बड़ी बात। मुर्गी और अंडे खाने से कितनी सारी बीमारियां होती है अभी प्रदेश के विज्ञानी और डॉक्टर और हेल्थ मिनिस्टर लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे। बर्तानिया के हेल्थ मिनिस्टर ने टीवियों के द्वारा और अखबारों के द्वारा प्रजा को चेतावनी दी है कि अंडे में जो पीला पदार्थ आता है उससे आंतों की बीमारी आदि शुरू हो रही है, और दूसरी भी कई बीमारियों के नाम ठाम दिए गए हैं विगतवार, मेरे पास वो सब है सामग्री। कुल मिलाकर अंडे से बहुत सारी तबियतें खराब होती है और 3000 आदमी हर हफ्ता में जमा हो रहे हैं बीमारी के कारण, अंडे का ही प्रभाव, उसमें एक आध आदमी मर भी जाता है ऐसा उस मैगजीन में आया है। दूसरी बात, अंडे से और भी कई सारे रोग पैदा होते हैं। जानकारों का कहना है कि हार्ट अटैक की बीमारी में अंडा ज्यादा जवाबदार है, हाई बीपी आदि में भी अंडा ज्यादा जवाबदार है, और अंडे में रहा प्रोटीन या शक्ति या कैल्शियम तो ये कैल्शियम तुम्हारा टमाटर में अंडे से 5 गुना है। अर्द की दाल और चने और मूंग और मसूर में भी प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। फिर भी सत्यानाश बढ़ रहा है, सुबह शाम बस जहां देखो ये तामसी खोराक, इंद्रियों को भड़काने वाला, वीर्य ग्रंथि को उत्तेजन करने वाला, काम विकार को बहकाने वाला जगह और अशांति बढ़ाने वाला खोराक, तामसी खोराक शास्त्रकारों ने बुद्धिमानों ने मना किया है। प्रचार यही हो रहा है, मेरी जान मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे खाले मुर्गी के अंडे, सत्यानाश हो रहा है और क्या बढ़ाओगे तुम। नारायण नारायण कही दे भाई साहब, नारायण नारायण नारायण। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सत्व गुण शुद्ध रहेगा, नहीं तो तमस से दबा हुआ अशुद्ध रहेगा सत्व गुण। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जो लोग चटका जीव का चटका लेकर थोड़ी देर की मजा चाहते हैं, उनको पता नहीं कि अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हैं, शांति आनंद पुण्य को नाश करके अशांति को आमंत्रित कर रहे हैं। भले जुआनी के जोश में पता न चले तामसी खुराक का, लेकिन ये तामसी खुराक जरूर खाने वाले की खबर तो लेता है। ऐसे हो कि कईयों की खबर लिया और वो मरीज होकर मेरे पास बिचारे आए, उनको मैं जानता हूँ, नाम तो लेना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ जिन्होंने आहार पर थोड़ा कंट्रोल नहीं किया, खान पान का ठीक ध्यान नहीं रखा। अभी तो डॉक्टर लोग बोलते कि मांस शरीर के लिए कोई जरूरी नहीं है, देर से पचता है। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष पहले कहा है, मछली मीट और अंडा या मुर्गी। मुर्गी खाने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए, विज्ञानी लोग बोलते हैं कि मुर्गियों को आजकल कैंसर खूब होता है, वो मुर्गी खाने के शौकीन मुर्गी के साथ साथ कैंसर की बीमारी भी पैसा देकर खरीद के ले आते हैं। इतने चतुर आदमी के पैसा देकर कैंसर खरीदते और खाते हैं। ये जीव का चटका कितना परेशान करता है, और लोग गुमराह करने के लिए प्रचार करते हैं कि बिना मुर्गे की मुर्गियां अंडा देती इसलिए फलहारी है, वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है फलहारी है अंडा। अंडा अगर फलहारी होता तो फल वृक्ष से पैदा होते हैं, अंडा मुर्गी से क्यों पैदा हुआ, वृक्ष से पैदा होना चाहिए। अंडा को अगर फलहारी बताते तो फलों में तो सी विटामिन फुल होता है और अंडे में सी विटामिन कहां है। 200 अंडे हड़प करो तो एक आंवला में जितना सी विटामिन है उतना सी विटामिन दिखाई देगा 200 अंडों में। अंडा फलहारी है, ये केवल गुमराह करने की बात है। मेरी जा मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे खाले मुर्गी के अंडे, ये प्रचार होता है अपने देश के। ओ ठेठ त्यों थी आखा देश में देखा है त्यों थी। खैर भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब अपने हैं। हम लोग पाश्चात्य इंद्रिय आकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं, जो गिने गिनाए हम लोग जाते हैं परदेश में तो अपनी संस्कृति का प्रसाद हमने चखा नहीं, इसलिए पाश्चात्य कल्चर से हम इम्प्रेस हो जाते हैं और वही पाश्चात्य कल्चर भारत में हम घुसेड़ते जाते हैं, इसलिए भारत की दुर्दशा हो रही। उतनी लैंड नहीं और आदमी इतने ठंड में ठुठरते नहीं है कि उनको जरूरी है कि दारू पीना या सुकड़े कपड़े पहनना। यहाँ का पहरवेश, यहाँ का खान पान, यहाँ का रीत रिवाज, यहाँ के लोगों के लिए जो अच्छा था वो ऋषियों ने पहले बना रखा है, उन्हीं की शरण आने से ही सुख शांति संयम भुक्ति और मुक्ति में सफलता मिलती है। हरि ओ राम महाराज कहते हैं कि पहले तो हमको कीर्तन में जाने से हरि नाम का चस्का लगा, जो जो हरि नाम का चस्का लगा त्यों त्यों इंद्रियों के विकार क्षीण हुए। हे मेरे विट्ठल, अब तो तेरी कृपा और तेरा भरोसा है, इंद्रियां तो बड़ी बलवान है और मन बड़ा चंचल है। पर्वत पर बैठकर भी तेरा भजन करता हूँ या घर में या मंदिर में तो कई बार मन ताली मार कर भाग जाता है। हे विट्ठल, तेरे कीर्तन की ताली से फिर मैं उसे वापस ले आता हूँ। हे मेरे विट्ठल, तू मेरी रक्षा करना, इन इंद्रियों ने और मन ने तो मुझे युगों तक भटकाया है। कंचन ने कामिनी ने इस जीव को आकर्षित किया इतना ही नहीं, लेकिन हे मेरे विट्ठल, मान बढ़ाई और ईर्ष्या ने भी हमारे चित्त को संसार में उलझाया है। हे मेरे परमेश्वर, मान और बढ़ाई ईर्ष्या से हमारा चित्त बचे और तेरे प्रसाद में, तेरे कीर्तन में, तेरी भक्ति में रंग जाए। हे मेरे रंगनाथ, तू ऐसी कृपा करना। हरि हरि ओ, हे मेरे रंगनाथ, मैं तो हरि कथा सुनूंगा, संतों के पैर पकड़ूंगा, रंगशिला पर नाचूंगा और मन के खेलों को देखूंगा, तेरे नाम की ताली बजाकर इन पांच विकारों को भगाकर तेरे प्रसाद में नाचूं, ऐसी तू दया करना। हे रंगनाथ, मुझे रंगशिला पर नाचने का अवसर दे, मुझे तेरे प्रेम में रोने का और आंसू बहाने का अवसर दे। विकारों में तो कई लोग रो रहे हैं, सच्चे हृदय से भगवान को स्नेह करने वाले तुकाराम महाराज ने तो बही खाते, लोगों से क्या लेना और देना है, वो बही खाते तो उठाकर इंद्रायणी नदी में डुबा दिए कि कब तक बाहर के हिसाब संभालूंगा, कब तक लेता और देता रहूंगा, जिससे लेना चाहिए उस ठाकुर जी की कृपा को लेने का समय इन बाहर के रुपए लेने देने में क्यों गवाऊंगा। जिस ठाकुर जी को अपना आपा अर्पित करना चाहिए उसको ही मैं अपना आपा दे रहा हूँ, ये बही खाता। हे इंद्रायणी देवी, हे इंद्रायणी नदी, मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ, मैं तो अब ठाकुर जी से लूंगा दूंगा, ये बही खाता मुझे नहीं चाहिए। उस संत हृदय ने अपने बही खाते डुबो दिए नदी में और अपने को डुबो दिया हरि कीर्तन में, अपने को डुबो दिया हरि ध्यान में, अपने को डुबा दिया रंगनाथ के ज्ञान में। वही सच्चे संत तर पाए, बाकी के लोग बड़े चतुराई से संसार के सुखों के पीछे पड़े थे, संसार ने उनको दुख ही दिया, परेशानी ही दी, अंत में सर धुन धुन कर पछता के मर गए और न जाने कौन से नरकों में या कौन से गर्भों में बिचारे घूमते होंगे। भगवान उनको भी सतमति दे, तुकाराम जैसी भक्ति हम लोगों को दे, तुकाराम जैसा त्याग और वैराग्य हम लोगों के हृदय में प्रकट हो। और रंगनाथ, संसार के रंग से रंगे हुए दिल तेरे रंग से रंग जाए, ऐसी तू कृपा करना प्रभु। हे परमेश्वर, हे प्राणी मात्र के सुहृद, पुत्रो कु पुत्रो जायस्ते तदपि माता को माता न भवति, हमको पुत्र होकर संसारी इंद्रिय विकारों में बार बार गिरते जाए, फिर भी तू दया करके हमें ध्यान की जगह पर, संयम की जगह पर, सत्संग की जगह पर ले जाता है, ये तेरी कृपा है। हे परमेश्वर, ये कृपा बहुत सारी हो जाए। हे ईश्वर कृपा, हे गुरु कृपा, तू स्थायी रूप से हमारे हृदय में निवास कर, इंद्रिय विकार हमारे हृदय को विकारों में घसीटे, उसके पहले तुम हमें हरि के ध्यान में, हरि के नाम में, हरि के कीर्तन में ले जाओ, ताकि वो विकारों की दाल न गले। विकारों की दाल गलने से हम जन्म जन्म में गलते जाते हैं और गुरु कृपा की विजय होने से, ईश्वर कृपा की विजय होने से हमारा विजय हो जाता है। हरि हरि ओ,
आ
जैसे हीरे से हीरा काटा जाता है, ऐसे ही मन से मन को काटा जाता है, मन से ही मन को समझाया जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मन बड़ा चंड है, चंचल है, इंद्रियां बलवती है, जीव को संसारी विकारों में घसीट जाती है, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जेवी हीरोनी हीरा चीरीजे, जेवी हीरोनी हीरा चीरीजे, चीरीजे तेवी मनाची मन धरीजे, तेवी मनाची मन धरीजे। हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे ही मन को मन से ही धरा जाता है। तो मन से ही ठाकुर जी को स्नेह करो, मन से ही प्राणी मात्र का भला चाहो। प्राणी मात्र का भला करने का साधन तुम्हारे पास संभव नहीं, सारे दुनिया के लोगों को रोटी खिला सको ये संभव नहीं, सब लोगों को बिना घर वालों को घर दे सको ये संभव नहीं हो सकता है। हो संभव हो न भी हो, सबको वस्त्रों से ढक दो ये संभव हो न भी हो, लेकिन सबके हित की भावना से तुम्हारा हृदय सब में बसे हुए हरि के प्रसाद से पावन होता है, फिर यथाशक्ति सबके हित का प्रयास करते हुए सबका जो सहारा है उस सहारे स्वरूप परमात्मा में प्रतिदिन गोता मारा करो, तो तुम्हारे इंद्रियों के विकार धीरे धीरे निर्विकार नारायण के सुख के तरफ मुड़ने लगेंगे। जेवी हीरे नी हीरा चीरीजे, तेवी मनेची मन धरीजे। जैसे हीरा से हीरा कटता है, ऐसे मन के विकार मन से ही कटते हैं, और आदमी निर्विकारी नारायण के सुख में गोता मारने लग जाता है। हरि हरि ओ, नाहं वसामि वैकुंठे,
नाहं वसामि वैकुंठे,
योगिनां हृदयेन वहि,
योगिनां हृदयेन वहि,
मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्रतिष्ठामि नारदः,
तत्रतिष्ठामि नारदः।
हरि हरि ओ, मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम दिलों का दुलारा नाम हरि, ओम कली का किनारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम
हरि, हरि
मीरा बोले प्यारा नाम
हरि,
पावन पावन नाम
हरि,
मधुर मधुर नाम
हरि, हरि
पावन पावन नाम
हरि, हरि
ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम
हरि,
दिल से बोलो दुलारा नाम
हरि,
नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम
हरि,
ओम दिलों का दुलारा नाम
हरि,
ओम काली का किनारा नाम
हरि,
प्रेम से बोलो प्यारा नाम
हरि,
ओम पावन पावन नाम
हरि,
ओम मधुर
हरि बोल। दुलारा नाम हरि ओम काली का किनारा नाम हरि ओम पावन पावन दर्शन मात्रेण
साधु दर्शन मात्रेण
तीर्थ कोटि फलम लभे
तीर्थ कोटि फलम लभे।
गीता के श्लोक पाठ से भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। गीता का श्लोक पाठ आपने पाठ तो किया, फिर से एक बार कर लेंगे। भगवान के श्री मुख से जो गीता प्रकट हुई है उसके एक श्लोक का फिर से पाठ करेंगे। सब लोग बोर्ड के तरफ देख के भी कर सकते हैं।
सनिंद्रियम सन्यमेन्द्रिय ग्रामम सन्यमेन्द्रिय ग्रामम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः
सर्वत्र समबुद्धयः
सर्वत्र समबुद्धयः
सर्वत्र समबुद्धयः
ते प्राप्नुवन्ति मामेव
ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूत हितेरताः
सर्वभूते हितेरताः
सर्वभूत हितेरताः
सर्वभूत हितेरताः।
इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण।
विकारी सुख की अपेक्षा भावना का सुख बहुत अच्छा है। किसी नटको नटिको फिल्म को देखकर जो मजा लेता है दृश्य को, ऐसे तो ठाकुर जी के मंदिर में जाकर जो भावना का सुख लेता है वो आदमी ऊंचा है, ऊंचा सुख पाता है। लेकिन भावना भी सदा नहीं रहती, लंबा समय नहीं रहती, बदल जाती फटाक से। भावना के सुख से भी ज्यादा स्थायी और सुलभ सविकल्प समाधि का सुख है, ध्यान का सुख है। लेकिन ध्यान भी सदा नहीं रखता, ध्यान भी सदा नहीं लगता, सविकल्प समाधि लगती है फिर भी विकल्प बना रहता है और वो टूट भी जाती है। उससे निर्विकल्प समाधि का सुख ज्यादा सामर्थ्य देता है और ज्यादा ठोस होता है, ज्यादा साफ सुथरा होता है, ऊंचा होता है। निर्विकल्प समाधि में भी कब तक रहेंगे, इससे भी ऊंचा होता है निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार। निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार माना फिर भीड़ में रहे, बस्ती में रहे, उसकी समाधि बनी रही, युद्ध करे समाधि करे उसकी समाधि बनी है, राज्य करे भिक्षा मांग के रहे उसकी समाधि बनी है, स्त्रियों के बीच जीता है तो समाधि बनी है, और गिरी गुफा में कौपिन चढ़ाकर एकदम ब्रह्मचर्य व्रत में रहता है तो उसकी समाधि बनी है, श्री कृष्ण की सदा समाधि है, युद्ध के मैदान में भी कृष्ण की समाधि है, बंसी बजाते समय भी कृष्ण की समाधि है, नरोवा कुंजरोवा कहने में भी कृष्ण की समाधि है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव निर्विकल्प तत्व में है। ऐसे ही राजा जनक भी निर्विकल्प तत्व में पहुंचे। उस निर्विकल्प तत्व में पहुंचने के लिए हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, निर्विकल्प तत्व के साक्षात्कार का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ऊंचे में ऊंचा होने से नीची प्रवृत्ति और नीचे संकल्पों के पीछे जो हम अपने को खपा रहे हैं और हाथ में कुछ नहीं लगता, उससे हम बच सकते हैं। ऊंचे में ऊंचा वो निर्विकल्प तत्व है परमात्मा, अंतःकरण उसमें स्थिर रहता है तो निर्विकल्प समाधि बनती है। समाधि फिर सब अंतःकरण स्थिर भी रहता है लेकिन अंतःकरण को भान रहता है कि मैं स्थिर हूं, तो ये सविकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि भी दो प्रकार की होती है, आनंदानुगत समाधि और विचार अनुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में भी दो प्रकार हो सकते हैं, भगवत भाव का आनंद अथवा विचार रहित निर्विचार होने का आनंद, शांत आनंद, भावयुक्त आनंद अथवा तो शांत आनंद। विषय आनंद, विद्या आनंद, योगानंद, भावानंद, ये सब भाव विषय चीज अलग अलग है लेकिन आनंद स्वरूप परमात्मा तो वही का वही। जैसे प्रकाश के आगे अलग अलग कांच रखते तो अलग अलग रूप से वो रंग देखता है, ऐसे ही कोई श्री कृष्ण के भाव का आनंद लेता है तो कोई राम जी के भाव का, तो गुरुदेव के भाव का, तो कोई मातृपिता के सेवा के भाव का, तो कोई राष्ट्र सेवा के भाव का। तो सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं हकीकत में, दिन रात सुबह शाम दौड़ धूप कर रहे हैं, कोई आदमी नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है। घोर नास्तिक भी गहराई से देखो तो आस्तिक है, वो आनंद तो चाहता ही। नास्तिक किसी देवी देवता भगवान रीति रिवाज को नहीं मानता लेकिन आनंद तो वो भी चाहता है। तो तत्व रूप से देखा जाए तो वेदांतिक दृष्टि से देखा जाए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और अनंत जिसका अंत नहीं वैसा वो अनंत है परमेश्वर। तो उस अनंत परमेश्वर को पाने की अथवा अनंत में टिकने की अथवा अनंत तत्व जानने की जो हमारे अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए तो हमारे काफी काफी समय शक्ति और हल्के विचार, समय शक्ति बच जाती और हल्के विचार क्षीण हो जाते। तो ऊंचा संकल्प करने के लिए और ऊंचे संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारा अंतःकरण ऊंचा होना चाहिए। भाई हम ऊंचे महल में रहें लेकिन अंतःकरण हल्के विकारों में है तो कुछ नहीं बनता। बाहर हम साधारण व्यवसाय कर रहे हैं, रोहिदास की नाई, जूते चप्पल सी रहे हैं, चमड़े को हाथ लगा रहे दिन रात, लेकिन अंतःकरण में विकार और वासना नहीं है तो मन चंगा कठौती में गंगा। और उस पुरुष ने करके दिखा दी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, चमड़ा भिगाने की जो कठौती थी उसी में गंगा बता रहे हैं वो। तो मन चंगा होता है कि विकारों का सुख छोड़कर आत्म सुख की मांग पड़ जाए मन में तो मन चंगा हो जाता है। इंद्रिय सुख, सेक्स का सुख, देखने सुनने चखने का सुख को छोड़कर आत्म सुख की मांग अगर तीव्र हो जाए तो मन चंगा होगा। आत्म सुख की मांग शिथिल हो रही है तो वाहवाही के सुख में फंसेंगे, सूंघने के सुख में फंसेंगे, सेक्सुअल सुख में फंसेंगे और वहां सुख में आदमी टिक नहीं सकता, वासना में फंस जाता है। तो जैसे हड्डी चबाते चबाते कुत्ते की मैड़ों से खून बहता और कुत्ता समझता कि यहां से मजा आ रहा है, ऐसे मनुष्य अपने को खपा खपा के समझता कि इन चीजों से सुख आता है। असली में वो सुख नहीं, दुखी दुख भोगते बेचारे, कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। आत्मधन उनके भाग्य में होते हुए भी वो पा नहीं सकते क्योंकि लक्ष्य ऊंचा नहीं है, साधन ऊंचा नहीं है। ऊंचा साधन है कि आत्मा का सुख पाने की रास्ता ऊंचा साधन है, और नीचा साधन है कि विकारी सुख पाकर अपने को धोखे में रखना। जैसे प्यास मिटाने के लिए ऊंचा साधन है गंगा जल, लेकिन नीचा साधन है दारू पी के प्यास मिटाना। तो दारू में तो परिश्रम भी है नुकसान भी है, ऐसे ही विकारों में परिश्रम भी है नुकसान भी है। तो और विकारी इच्छाएं, सब आदमियों की सब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छा पूरी करना आपके वश की बात नहीं है, लेकिन इच्छा निवृत्ति करना तो अपने सबके वश की बात है। वासनाओं को पूरी करना ये सबके वश की बात नहीं है। वासनाएं पूरी नहीं होती, गहरी हो जाती है। मानो मेरे मन में वासना है दारू पीने की, जरा सा मैंने पी लिया, फिर कल जरा सा पी लिया, तो वासना मिटी नहीं लेकिन दारू पीने की वासना गहरी हो गई, बीड़ी पीने की वासना गहरी हो गई, चाय पीने की वासना गहरी हो गई, फिल्म देखने की वासना गहरी हो गई। ऐसे पत्नी पति के सुख की वासना है तो चलो पत्नी से मिल ले या पति से मिल ले, वासना पूरी कर दे। नहीं, वो वासना का हल्का सा झलक जैसा सुख, सुख का भास होता है, शक्तियां अपनी नाश होती है और वासना गहरी उतरती। तो जितना स्त्री पुरुष साथ में रहेंगे उतना ही वासना गहरी उतरती जाती, वासना मिटती नहीं। शरीर कमजोर हो जाता है, उबान हो जाएगी, थकान हो जाएगी, लेकिन वासना, वासना भोगने से नहीं मिटेगी, वासना विचार करने से और हिम्मत करने से और राम का बल लेने से ही ये काम की वासना मिटती है। ईश्वरीय बल लेने से हल्की वासनाओं के साथ आदमी जूझता है और देर सवेर सफल हो जाता है। और हल्की वासना भोगते भोगते कोई तृप्त हो गया हो या मुक्त हो गया हो, आज तक मैंने सुना नहीं, आपने सुना है तो कृपा कर सकते हैं, बता सकते हैं। भोगी आदमी कोई मुक्त हो गया हो, वासना तृप्त हो गई हो, थक गया होगा, उब गया होगा, बीमार पड़ गया होगा, मर गया होगा, नरकों में घसीटा गया होगा, ये तो हम लोग अनुमान कर सकते हैं या देख समझ भी सकते हैं। लेकिन वासना पूरी करके, वासनाएं भोग कर कोई आदमी मुक्त हो गया या भगवान मिल गया उसको, वासना भोग कर अशांत हुए, ऐसा तो हम देख सकते हैं। वासना भोग कर गुलाम हो गए, गुदगुदू बड़ा वायसराय जिसकी सिग्नेचर से सिपाही मर मिटते बेचारे, वो वायसराय लेडी के करता है सारा उसका बड़प्पन जरा सा शिशनाहिंद्री की वासना में खत्म हो जाता है। जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चमे निवृत्ति। धर्म क्या है ये जानते हैं, लेकिन वासना ऐसा अंधा बना देती है कि धर्म पर चल नहीं सकते। और अधर्म क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन वासना इतना अंधा बना देती है कि अधर्म से बच नहीं सकते। तो अब उपाय यह है कि अपने अंदर बल लाओ। जानते हो तो चलो, बोले ताकत नहीं है। जानते हो अधर्म को तो बच्चो, बोले ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तो भगवान के नाम का जप और प्राणायाम आपके तन को तंदुरुस्त और मन को आध्यात्मिक ताकत देगा, इसलिए चलो संध्या के प्राणायाम करते हैं। इतना लंबा व्याख्या करना पड़ता है प्राणायाम कराने के लिए, क्यों? क्या कलयुग का आदमी है, इससे क्या फायदा उससे क्या फायदा करके छोड़ देगा, दो दिन करके छोड़ देगा। आप लोग कभी न छोड़ो संध्या, इसलिए ये सब लंबी व्याख्या करनी पड़ती है। प्रतिदिन आप प्राणायाम करने की कृपा करो।
गुरु भक्ति भी भावना से होती है, सेवा भावना से होती है, भक्ति भी भावना से होती है। भावना का सुख मजबूत हो जाए तो सविकल्प समाधि में बदल जाता है, सविकल्प समाधि मजबूत हो जाए तो निर्विकल्प समाधि का रूप लेती है। और उस समय सतगुरु कोई तत्व वेता हो तो निर्विकल्प तत्व का उपदेश देकर निर्विकल्प तत्व का साक्षात्कार करा दे। अगर रास्ते में ही कोई गड़बड़ हो गई और शरीर पड़ गया, गिर गया, मुक्ति की तीव्र इच्छा नहीं है तो ऐसा साधक ब्रह्मलोक अथवा भाव समाधि तक पहुंचाए तो स्वर्गलोक, अथवा सत्कर्म तक पहुंचाए तो स्वर्गलोक का सुख भोगता है, फिर आकर मनुष्य जन्म पाता है। जैसा संग रंग मिलता है ऐसी फिर उसकी यात्रा होती है। लेकिन हृदय में उद्देश्य ऊंचा है और दृढ़ है तो वो साधक किसी कारण से अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता, मर जाता है, तभी भी उसको अगले जन्म की हुई साधना का प्रभाव उसे फिर परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ले चलता है। ऐसे एक साधक की जीवन घटना है। वो साधक रामानंद स्वामी की सेवा करता था, गुरु जी की भिक्षा लेने गया, देरी हो गई किसी कारण से, तो ब्राह्मणों की बस्ती जल्दी भोजन कर लेते, वो एक किसी बनिया के पास पहुंचा। ऐसा बनिया था जो चमड़े का धंधा करने वाले लोगों को ब्याज पर पैसा देता था, एक रुपए पर दो आना, 12% होता है, दो आना माने 12.5%। उस ब्याजखोर के घर की भिक्षा ले आया। गुरुजी को तो भिक्षा मिली, गुरुजी ने भोजन खाया, लेकिन भोजन के बाद शाम को थोड़ा आराम करके 10-15-25 मिनट शास्त्रादि पढ़ा, और बाद में जब संध्या वंदन करके समाधि में बैठने का गुरु ने प्रयास किया तो आज ध्यान नहीं लग रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है और हल्के विचार आ रहे हैं। गुरु जी का हृदय स्वच्छ और हल्के विचार, चेला जी को बुलाया कि आज अन्न कहां से लाया था, सच बता। शिष्य गुरु के आगे झूठ बोले तो उसको 1000 गुना पाप लगता है, ऐसा वो शिष्य जानता था। जैसे साधारण आदमी की सेवा करने से जो पुण्य होता है, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसे साधारण आदमी के आगे झूठ बोलने से जो पाप लगता है, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे बोलने से उस 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए जो लोग राजकारण खेल कर या मस्का पालिस करके गुरुओं को ठगना चाहते हैं, वे बेचारे फिर गुरुओं के नजीक ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पाप बढ़ जाते हैं।
ऐसा भी मैंने कई जगहों से सुना देखा है। और जो सरल हृदय आते हैं, अपराधी होते हैं, अति पापी होते हैं और सरल हृदय से पाप स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे लोग महापापी और महा डकैत लोग भी अच्छे ऐसे सदग्रस्त हो जाते हैं, जैसे मुगला डाकू श्रद्धानंद संत के आगे अपनी बेवकूफी, अपना पाप ताप स्वीकार करता है, सच्चाई का गुण प्रकट करता है, तो मुगला डाकू हूं एक ऊंचा नागरिक सिद्ध हो जाता है, जिसकी चर्चा संतों के श्रीमुख से भी होने लगती है।